वञ्चकल्पोभ्यश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालिने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति बृहद् भागवतामृतम् द्वितीय विभाग सप्तम अध्याय वनलतास्तरवः आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त इव पुष्पबलाढ्या प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेमरहिष्टतनवो बभ्रशूष्म सनातन गोस्वामी जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज गोपी भाव की चिंतन करते करते उसमें आविष्ट हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि ये गोपी भाव में सिद्ध हो गए हैं और आगे वो बतलाएंगे जी किस प्रकार से वक्ता सुखदेव गोस्वामी भी गोपी भाव में सिद्ध हो गए। तो यहां पर वो तन्मय होकर के वर्णन करते करते मानो खुद ही वो गोपी हैं इस रूप में वो कह रहे हैं उस श्लोक श्रीमद् भागवत के श्लोक को। वन लता करव आत्मनि विष्णु व्यंजयंत इव पुष्प फलाध्या प्रणत भार पिटपा मधुधारा प्रेम प्रहिष्ट तनवो बप्रशुष्मा। वृंदावन के तरुलता भी सर्वव्यापक कृष्ण को कोटि कोटि प्राणों से प्राणों के रूप में अपने अंतर में रखकर प्रेम की विवशता हेतु उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने भावों को। तरुलता कृष्ण के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। जैसे आश्रुत वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण काश्चित परोक्षम कृष्ण वर्णयंत धीरे धीरे नहीं ये वेणु गीता कर रहे हैं। काश्चित परोक्षम कृष्णस्य आश्रुत वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण तद वर्णयतुम आरब्धा नाशकन स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो निपत। वर्णन करना चाहती हैं कृष्ण के वेणु गीत को गोपियां घर में बैठी हैं कृष्ण गोचारण कर रहे हैं वनों वनों में एक वन से वन दूसरे वन में बहुत दूर किंतु भाव नेत्र से ये कृष्ण को वेणु बजाते हुए देख रही हैं और उनकी क्या दशा होती है उनको भी देख रही है, और उसी का परोक्ष कृष्ण वहां नहीं है तो भी वर्णन करना चाहती है अपने सखी को, किंतु स्मर बेगेन विक्षिप्त मनसो, उनका चित्त मुक्त हो गया, मोहित हो गया, विक्षिप्त हो गया और वो वर्णन नहीं कर सके। उसी प्रकार से महाराज परीक्षित भी वर्णन करना चाहते नहीं कर पाते। किस तरह से, जिस प्रकार से यहाँ पर ये वृक्ष वृंदावन के तरुलता भी प्रेम में विवश होकर मानो व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात पत्र पुष्प से भरे हुए नम्र शाखाओं में से लता और वृक्ष सकल प्रेम में पुलकित होकर प्रणाम करने के लिए अपनी लंबी लंबी भुजाओं शाखाओं रूप भुजाओं को लेकर अपने अपने पुष्पों को उनके चरणों में अर्पण कर और आंखों से प्रेम की धारा बह रही है। बोल नहीं सके, प्रेम में विवश होकर के नतमस्तक हो गए। ये उसका अनुवाद अब सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं। वृंदावन की जब कृष्ण की मुरली की ध्वनि कैसी है, वेणु ध्वनि कैसी है, यदि कृष्ण गोचारण करते 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 वेणु ध्वनि करते हैं गायों को बुलाते हुए, उस समय में सूखे हुए वृक्षों में और लताओं में भी फूल निकल आते हैं, नई नई कोपलें और पत्तियां भी उग आती हैं, शिला द्रवित हो जाती है बंसी की ध्वनि से, नदी का प्रवाह रुक जाता है। साधारण जल प्रवाह स्थगित होने से यदि धारा रुक जाए तो वो ऊपर में उठ जाएगा, उच्च प्रदेशों को भी प्लावित करती हैं, एवं तरंगों में कमल इत्यादि उपहार लेकर के श्री कृष्ण के चरणों में वो पुष्पांजलि प्रदान करती हैं। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है जनों नदियां भी सचेतन होकर के कृष्ण के चरणों में प्रणय की भिक्षा मांग रही हैं, और वो सचेतन हो गई नदियां भी, किंतु ब्रज देवियों के उत्कट अनुराग के प्राबल्य के लिए उन्हें देख करके अपने रस के अनुरूप में ये ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं रही वो तो बात अलग रहे, किंतु ये अपने उच्छ्वासों को ये प्रकाश कर रही हैं, कौन गोपियां। किंतु मैं समझता हूं कि गोपियां सत्य संकल्प हैं, इसलिए उनका कोई भी संकल्प, कोई भी जो कि वो सोचती हैं विचार करती हैं, कोई भी झूठा नहीं होगा, इसलिए जरूर ऐसा होता होगा। तरुलता कौन है, जटकिन चित्रिण गुल्म कीकट मुखम गोष्ठे समस्तं हितत सर्वानंद मुकुंद दैतम, कृष्ण के बड़े प्यारे हैं और सचिदानंद स्वरूप हैं, वो सचेतन हैं अचेतन नहीं है, उनका कृष्ण के प्रति हास्य भाव नहीं है। क्या भाव है, या तो सख्य या वात्सल्य या मधुर भाव, सखी भाव है। शांत तो वृंदावन में प्रकाशित नहीं आच्छादित रहता है, और दास्य भी शुद्ध दास्य नहीं, सख्य या वात्सल्य मिश्रित दास्य वहां पर होगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं मेघ इत्यादि से भी ये वृक्ष और लता हैं अधिक सचेतन है। मेघ आकाश में ऊपर में रहेगा, कुछ संचरित होता है, पानी की बूंदे भी कुछ उससे गिरती है, कृष्ण के ऊपर छत्र छाया कर देता है, किंतु कृष्ण से उनका स्पर्श नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, न उनसे चरणों से, न उनके शीर से, न किसी अंग से नहीं होता, किंतु वृक्ष और लताओं का इनका परम सौभाग्य है, ये कृष्ण की अत्यंत निकट से स्पर्श करते हैं। अपने प्रत्येक अंगों से, अपने पैरों से उनके ऊपर में चढ़ते हैं, अपने हाथों से उनके पुष्प इत्यादि का चयन करते हैं, अपने वस्त्रस्थल से उनका आलिंगन करते हैं, कदम्ब वृक्ष इत्यादि का आलिंगन करते हैं। कदम्बों को श्रीमती राधिका जी स्वयं समझते हैं, वो उनके फलों फूलों और नई नई कोपलों से वो अपना श्रृंगार भी करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं। इस तरह से इनका अधिक सौभाग्य है, इसलिए कोई सखी कह रही है दूसरी सखी से, अरे सखी भी, अरे ये मेघों की तो बात क्या, उनको तो बात ही अलग रहे, देखो तो ये कैसे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तथा दिवा भागे दिन में ये गोपियां बिरह सागर में निमग्न हो जाती, ये क्यों कहा? दिन भाग में केवल बिरह में निमग्न होती है, इसका भी गुरु कोई रहस्य होगा। ऐसे दुख सागर में निमग्न हो जाती हैं कि उस बिरह सागर से उत्तीर्ण होने के लिए, पार करने के लिए कृष्ण के बिरह सूचक वन में बिहार सूचक गानों को अवलंबन करती हैं, अतः तो वो गाने लगते हैं, उनका वर्णन करती हैं, उनकी कथाओं को बोलती हैं परस्पर परस्पर, किस कृष्ण किस प्रकार से विहार कर रहे हैं, कैसे गोचारण कर रहे हैं, कैसे सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, इस तरह से वो वर्णन करके बिरह सागर से मानो निकलना चाहती हैं, इसलिए उसमें करती हैं। बिरह माने क्या? विशेष रूप से रह, रह माने निर्जन इत्यादि में मिलन को विरह करते हैं, ऊपर से मिलने में भीतर को खो देते हैं, भीतरी भावों को खो देते हैं, और भीतर में मिलने से ऊपर का कुछ खो जाता है। कौन दोनों में श्रेष्ठ है? विशेष रूप से जो मिलन है वो विरह अवस्था में संभव हो सकता है, तो अभी गोपियां इसे संतुष्ट, ब्रजवासी लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे, चाहते हैं मिलना बाहर से, किंतु भीतर का खोना नहीं चाहते, इसलिए कभी कभी मिलन में ही विरह हो जाता है। विशेष रूप से ऐसे उसमें चले जाते हैं भीतर में कि बाहर का सब कुछ खो देते हैं। ये गोपियां बिरह समुद्र से पार करने के लिए कृष्ण की, कृष्ण के गमन गमन भंगी, उनका परस्पर प्रेम पूर्वक आलाप, उनका प्रेम पूर्वक बातचीत आलाप, बंकी की आंखों से उनकी तरफ में देखना इत्यादि का स्मरण करके और भी बिरह सागर से पार करना चाहती हैं और डूब जाती हैं। जितना चेष्टा करती हैं मानो दलदल में वो धस जाती हैं, अपने को तुच्छ समझकर और कृष्ण से थोड़ा सा संबंध वाली वस्तु को वो धन्य और कृतार्थ मानते हैं, और वैसा ही भाव अपने में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। गोपियां ऐसा ही यहां पर कर रही हैं, वन लता और तरुओं को देख करके उनका महात्मा वर्णन कर रही हैं प्रेम में पक करके। वन लता तरव आत्मनि विष्णु पहले के श्लोक में यह बतलाया गया है नद्दस्तदात उपधार्य मुकुंद गीत हंत्राय अद्रि अबला हरिदास वर्य। इसमें बतलाया गया है गिरिराज गोवर्धन के तट पर उसके शानू प्रदेश में कृष्ण विहार कर रहे हैं, गायें पास ही में चल रही हैं, कृष्ण उनका आह्वान कर रहे हैं और बेनिराज के आकर्षण उसको सुन करके वृंदावन के लता इत्यादि भी अत्यंत आकर्षित हो जाते हैं, गायों को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, काली धवली श्यामली किशंगी यमुने इत्यादि रूप में उनका आवाहन करते हैं। उस समय गायें और बछड़ों का तो वो आगे शायद बतला गए हैं या बतलाएंगे, किंतु तरुलताओं की जिनको पुकार नहीं रहे बुला रहे हैं गायों की, और उसको सुनकर के ये वृक्ष लताओं का कैसा भाव हो जाता है, इसका ये वर्णन कर रही हूं। आप उनको सुनकर के वेणुध्वनि को आंखों से आंसू की वर्षा होने लगती है, मधुधारा निकलती है, विशेष करके आम्र कदम्ब नीप इत्यादि वृक्षों से रस की धारा निकलती है। यदि सवेरे या शाम को मधुमास माने चैत्र मास में जाओ तो ऊपर से कुछ वर्षा जैसे होती है छोटी छोटी फुहार, ऊपर से फुहार जैसा वो गिरते हैं और उसके पत्तों पर मधु इतना जम जाता है कि बच्चे लोग सब चाहते हैं बड़े प्रेम के साथ। यहां पर स्म संस्कृत में विस्मय के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग हुआ है। बड़े विस्मय के साथ में ये बतलाए देखो तो पेड़ों की क्या दशा है, कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके हमारी ऐसी दशा नहीं होती, हमारी दशा ऐसी नहीं होती, इसलिए बतला रही है पेड़ों की कैसी स्थिति हो जाती है। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा है क्या वो पशु पाछी झूरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा, तात्पर्य है किंतु कभी
नहीं
पशु पक्षी भी जिनकी गाथा को सुनकर के प्रेम की लीला और उदारता को सुनकर के गल जाते हैं, पत्थर की शिलाएं भी गल जाती हैं और हम लोगों का चित्त इतना दिन सुनकर के भी कुछ गलता नहीं। गोपियां भी ऐसे अपने को दुर्कार कर रही हैं, हम लोगों को भी ये विचार करनी चाहिए क्या कारण है कि हमारा हृदय द्रवित नहीं होता, निर्मल नहीं होता, भगवान की कथाओं को रोज रोज सुनते हैं, गोपियों का चरित्र नहीं होता। और इन पशु पक्षियों को देखो, हम लोग अभी हॉलैंड गए थे वहां पर बतलाया था ना कैसे हम लोग हरे कृष्ण कर रहे और सैकड़ों गायें कान खड़ी करके बड़ी दूर दूर से दौड़ती हुई हम लोगों के तरफ में आ करके और एकदम खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी गायें जो कि 50 किलो 60 किलो दूध देती हैं और एकदम खड़ी हो जाती, उनके बछड़े सुनकर के धीरे धीरे आने लगते हैं। और हम लोग रोज करते हैं रोज सुनते हैं किंतु चित्त द्रवित नहीं होता, पुलकित नहीं होता, यहां तक कि वैष्णव संघ से इतनी विरक्ति हो जाती है कि ऐसे वैष्णव संघ को भी छोड़ करके हरिकथा छोड़ करके न जाने निर्जन में हम कहां चले जाते हैं और न जाने क्या करते हैं भाई, ऐसा कठोर विष्णु माने व्यापक, सर्वत्र वर्तमान होने पर भी भक्त वश्यता हेतु नंद के स्वरूप में सर्वदा स्थित है, सबके हृदय में है कृष्ण। मानो कृष्ण को विष्णु व्यंजन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ये विष्णु है, व्याप्नोति इति विष्णु, सर्वत्र है, किंतु भक्त वात्सल्य के कारण हमारे सामने खड़े हैं। इस चीज को मानव व्यक्त करने के लिए सदा स्थित परम विष्णु को निधिर न्याय यत्न पूर्वक, ऐसे कृष्ण को, कृष्ण को अपने हृदय में रखते हुए भी प्रेम विवशता हुई हो, प्रेम विवश होकर के उनको व्यक्त कर रही है। कैसे व्यक्त कर रही हैं? कृष्ण को देखते ही, उनकी बंसी ध्वनि सुनते ही, उनकी डाले जो ऊपर थी धीरे 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 सखाओं के साथ में नीचे उतर आए। मौसम नहीं है ठीक फूल का और फल का, किंतु कहां से फल और फूल मंजरी एकदम उसमें भर गई। ये क्या चीज है? ये हृदय, हृदय का भाव उनके अंदर में प्रकाशित हुआ। यहां पर तीन पदों के द्वारा व्यंजयंत इव पुष्प फलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवो सूक्ष्म, इन तीन पदों में उसका लक्षण दे रहे हैं। जब पेड़ों की और लताओं की कैसी स्थिति हो जाती है, पुष्प फलाढ्या, पुष्प फलाढ्या, साधारण रूप में तो पुष्प और फल तो है ही है, फलों के द्वारा और भी गंभीर सब अर्थ यहां पर प्रकाशित करेंगे। लताएं मानव प्रेयसी हैं कृष्ण की, वो पुष्प और फल आदि से भर जाती हैं बाहर में, किंतु ये बाहर का नहीं है, ये भीतर का ही है, ये अनुभव है। अनुभव बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें अश्वस्वाद सात्विक इत्यादि ये सब भाव हैं। इसके अतिरिक्त हाव भाव हेला और भी बहुत सी चीजें, ये माने उसके द्वारा वंचित हो रहे हैं। यदि टेढ़ी डाल करते हैं तो क्या समझना चाहिए? माने हाव के रूप में लेकर कृष्ण के प्रति एक तक निहार हैं। फूल फल उनके हृदय के अपने अनुभव हैं, यदि उनकी आत्मा में ये भाव होंगे तो शरीर के बाह्य रूप में अनुभव दिखते हैं। अनुभव माने पीछे जैसा उसका अंतर का भाव होगा उसी के अनुरूप बाहर में लक्षण प्रकाशित होने पर वह अनुभव कहलाता है। भीतर में भाव नहीं है और ऊपर में हो जाएगा, ऐसा नहीं, भीतर के भाव के अनुरूप में ऊपर के लक्षण ये सब होते हैं। उसके भक्त स्वामी सिंधी त्याग में सब लक्षण दिया गया, उसमें एक लीला भी है, अनुभव है। लीला मैंने वो इतना अधिक तदात्म्य हो जाता है साधक, साधक मत कहो बल्कि राग जो जिनके हृदय में है, रागमयी भक्ति वाली जो गोपियां रागात्मिका हैं, उनको ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। देखते हैं लीला मैंने कृष्ण का स्मरण करते 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 तादात्म्य हो करके कृष्ण को अपने को समझते कि मैं ये कृष्ण, और कृष्ण बन करके दूसरी गोपियों को उसके अनुरूप मानकर और उनसे वैसा ही व्यवहार करती हैं, जैसे किसी को एक ने पूतना के रूप में देखा, और अपने आप उसके बस्तक्षल पर चढ़कर और उसका स्तन धारण किया और चूसने लगी उसके प्राणों को। और दूसरी कहती है जिसको पकड़ी है जैसे छोड़ो रे छोड़ो रे। अब जो कृष्ण अपने को कृष्ण में तादात्म है वो तो गोपियां हैं। आज जिसको पुतना जो बनाया है वो जो गोपियां नहीं है क्योंकि उनका तादात्म्य नहीं है, वो जोग माया के द्वारा प्रकटित हैं केवल। इस चीज को हमारे रूप सनातन गोस्वामी और ये सब लोग नहीं प्रकट करते, तो हम लोग तो यही जानते थे कि एक कोई गोपी हो गई कृष्ण हो गए और एक पुतना। किंतु ये समझ में नहीं आता है जो जो पुतना हुई उसका ये भाव कृष्ण में तो तादात्म्य नहीं है, तो पुतना में तादात्म्य है। आ रहा है समझ में? ये कृष्ण में तादात्म्य नहीं है, इसका तादात्म्य है पुतना में। तो गोपियों का पुतना में क्यों तादात्म्य होगा? ये तो भक्ति विरुद्ध है। कृष्ण के नियजन होना चाहिए ना, उसमें तादात्म्य होती। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अनुग्रह करके हम लोगों जैसे लोगों के संदेह को दूर करने के लिए ये बताया, नहीं ये जो गोपियां जो बनी थी ये जोग माया के द्वारा क्या प्रकटित थी, वो भी लीला है। किंतु ये स्थाई नहीं रहता, ये क्या है संचारी भाव जैसा, संचरण करके अपने मूल पानी में मिल जाना और फिर दूसरी फिर उसमें से निकल फिर उसमें मिल जाना, ऐसे भाव संचारी कहलाते हैं। मुख्य मूल भाव स्थाई भाव के वो संचरित तो होते हैं और फिर उसमें मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और फिर नए नए तरंग सब उठते हैं। ये भी लीला है, लीला अनुभव स्थाई नहीं होता। नहीं इसीलिए यहां पर कुछ मायावादी अद्वैतवादी गोपियों को इसी रूप में ग्रहण करते हैं, यही अंतिम साधना है। इसलिए वो कृष्ण में मिलकर के एक हो जाना चाहते हैं, किंतु वो उस चीज को जानते नहीं है, रूप गोस्वामी के भावों को पढ़ा नहीं, हृदयंगम नहीं करते, इसलिए इस चीज को समझ नहीं। यह बात तो केवल गोपियों के लिए संभव है लीला अनुभव, दूसरों के लिए नहीं। यहां तक कि सत्यभामा को भी ये संभव पर नहीं है, रुक्मिणी इत्यादि के लिए भी संभव नहीं है और दूसरों के लिए नहीं। जशोदा जी का भी लीला अनुकरण ऐसा नहीं होगा, कृष्ण बन जाना और दूसरे रूप में हो सकता है। इसलिए ये गोपियां यहां पर बोल रही हैं, ये फल फूल मत समझो, गोपियों का अनुराग है जो फल और पुष्प के रूप में बाहर के रूप में निकला हुआ दिख पड़ता है, असल में यह अनुराग है उनका। ये वृक्षों का परम सौभाग्य है, लताओं का परम सौभाग्य है कि ये फलों को उन्होंने धारण किया है, जैसे बेल वन में बेल है, कैंत होता है ना, कैंत के फल होते हैं, कमरंगा एक फल होता है, उसके 6-7 षटकोण जैसे और ठीक उसका रंग वैसा ही होता है, मानो श्रीमती राधिका के एक एक भावों की व्यंजना करने के लिए ये सब फल होते हैं। लताओं के जो सखियां हैं कृष्ण की प्रेयसियां हैं, इनके हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए मानो ऐसे भावों को व्यक्त ये कर रही है, असल में है ये अनुराग। परम सौभाग्यवान है जो ऐसे फलों को और ऐसे फूलों को ये धारण करते हैं। यहां पर इनके द्वारा यही व्यक्त कर रहे हैं। अक्षय संपत्ति है जिसके द्वारा कृष्ण की कैसे कैसे सख भाव से वात्सल्य भाव से और मधुर भाव से ये सेवा कर रहे हैं और कर रही हैं। कृष्ण को मानो प्रणाम कर रहे हैं ये।
कौन कौन भाव हुआ था?
अब देख लेना, वो सब नहीं बतला
अभी।
कोई कोई सखा भी हैं, कोई कोई सखी भी हैं, लताएं सखियां हैं। सखियां में भी बहुत प्रकार की सखियां, उनमें से अपने को जिस प्रकार से वो गोपियां अपने भाव को उसमें आरोपित कर रही हैं, वो ठीक अपनी जैसी, जो जो गोपी जैसी है वैसे ही उसको समझ रही है, अपने भावों को ये व्यक्त कर रही है। कोई पुरुष रूप में के भाव को, जैसे कि वृक्ष इत्यादि हैं, सखा के रूप में कृष्ण को फल दे रहे हैं, कोई सखी के रूप में फल दे रही हैं, जैसे जिनके भाव हैं उसी रूप में उसको ग्रहण कर रही हैं। ये इनकी अक्षय, इनका फल है। प्रणाम करने के लिए अपने सखाओं को उन्होंने निमित कर दिया। यद्यपि दासरस जैसा मालूम पड़ता है, किंतु दास्य रह नहीं, ये दाक्षिण्य भाव वाली गोपियां जैसे कृष्ण के चरणों में झुक जाती हैं, उनके चरणों को अपने गोदी में ले लेती हैं, उनका सम्मान करती हैं, कभी अपने स्कंधों में रखती हैं, मानो इस तरह से। अर्थात विनय लक्षण, विनय माने दाक्षिण्य भाव, प्रणाम के द्वारा रूप और भाव संपत्ति को ये मानो प्रकाश कर रहे हैं। हृदय द्रवीभूत हो जाने के कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वय संबंधी हर्ष विकार रूप परम भक्ति संपद युक्ता है। अर्थात गुण और भाव हृदय द्रवित होने पर स्थूल और सूक्ष्म शरीर संबंधी हर्ष इत्यादि को, आनंद इत्यादि को, अर्थात परमा भक्ति को धारण करके दुर्लभ संपत्ति को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए मधुर धारा हो गया समय, मधुर धारा का वर्षण करती हैं। कृष्ण गोचारण करके लौट रहे हैं। अटत जद भवान अन्हिकाननम त्रुटि जुगायते स्वाम अपश्यतम कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उद्दीक्षताम पक्ष कृत दिशा। इसके बाद के श्लोकों में भी है, कृष्ण जब लौट रहे हैं तो गोपियां देखती हैं, जो जादुकुल की स्त्रियां कंस के रंगस्थल में जो भावों को व्यक्त कर रही हैं, उसका तीसरा श्लोक या चौथा श्लोक। जब कृष्ण वन से लौट रहे हैं, गोपियां प्रतीक्षा करती हैं कृष्ण। हाँ, प्रातः प्रजात प्रजत अभिशतश्च सायं गोभी समम कण्यतो अस्य निशम्य वेणुम निर्गम्य तूर्णम अबलापुति भूर कन्या सस्मो मुखम। अच्छा ठीक, गोपियां वहीं पर प्रतीक्षा करें, कृष्ण को आते और जाते समय बन पे निर्गम्य तूर्णम पति भूर पुण्य, परम पुण्य से, परम पुण्य माने क्या, परम प्रेम से वो देखती हैं और देखते ही आंखों में आंसू छलक आते, कृष्ण का रूप निहार नहीं सकती और अपने को दोष देती हैं, ब्रह्मा का दोष। एक तो आंखों में पलकें, और यदि पलकें भी ना रहें तो देखने में आंसू छलक करके आ जाते हैं, देख नहीं पाते। ये आंसू क्यों आते हैं? इसलिए अपने भावों को यहां पर लताओं में और वृक्षों में आरोप कर देते हैं, अपने भावों को। इनका न जाने भाव क्या है, वृक्षों का न जाने भाव क्या होगा, वृक्ष वहां तक नहीं समझते। यदि सिद्ध परिकर भी हो तो उनमें ये भाव होना, महाभाव होना बड़ा कठिन है। उनमें प्रेम नित्य सिद्ध होने पर भी गोपियों जैसा ऐसा भाव होना बहुत असंभव, किंतु वो अपने मने भाव को उनके प्रति, ये आंखों में आंसू छा जाते हैं, बार बार पोछती हैं, देखने की चेष्टा करती हैं और फिर आंसू आ जाते हैं। महाप्रभु जबकि नित्य कर रहे हैं रथ यात्रा में, कहते हैं कि आसपास के लोग भीग गए। जब वो नित्य करते हैं और उसमें पानी जो निकलता है तो वो चारों तरफ में गिरने लगता है और आसपास के लोग तितिलो तितिलो माने भीग गए। ये कैसे संभव है, हम लोग नहीं अनुमान कर सकते हैं। उस समय जिन लोगों ने देखा उनमें भी सिद्ध महात्माओं ने जो देखा वो लोग इसका अनुमान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्हीं भावों को जो गोपियां व्यक्त कर रही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, किंतु कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा। इन भावों को स्पर्श करना भावावस्था में आए हुए लोगों के लिए संभव है, इनको समझ करके हृदय में कुछ उद्दीपना होगी। साधारण लोगों के लिए उद्दीपना होना कठिन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों का कभी कभी ऐसा सौभाग्य हो तो इन चीजों को हम लोग अनुभव कर सकते। असल में यही सर्वसाध्य शिरोमणि भाव है, साधन का उद्देश्य भी यही है। इनको सुनकर के भी यदि हमको लोभ उत्पन्न नहीं होता है गोपियों के भाव के प्रति, तब तो हम लोग एक जड़ पत्थर की भांति हैं। कितने तरह के भाव होंगे इसका, एक दो तरह का नहीं, और वर्णन करना संभव भी नहीं। अहो अरे लताओं तो लताएं हैं, लताएं कैसे खड़ी हैं, खड़ी नहीं हो पा रही, प्रेम के मारे झुक गई और झुकने से भी वो गिर जाती। उनके पतियों ने अलंबन देना चाहा, पति कौन है, वो जब खड़े हैं और गोपियां जब भी झुक गईं और अपने को संभाल नहीं पाई तो अवलंबन करने के लिए चारों तरफ से उनको लपेट पेड़ों को जिससे वो खड़ी हुई, और उन लोगों ने भी वैसे ही अवलंबन लिया। वो अपने पतियों के सहित लता चयों के सहित वहां देर पति पादप चरित उनके संपर्क से, किनके, उन लताओं के संपर्क से, लताओं का ऐसा भाव देखा उनके पतियों ने और देख करके वो भी प्रेम में विवश हुए। जैसे दिव्या विमान गतय स्मरणन स्वारा भर्षक पशुन कबरा मुहोर गई, पति उनके साथ में है राष्ट्रीय स्थल में वायु विमान पर और स्त्रियां मुग्ध होकर के गिर पड़ी और उनके पति उनको संभालने में लगे, उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण की इस लीला को भी नहीं देखा, न बंसी ध्वनि श्रवण किया। उनके स्पर्श से यदि कुछ हुआ हो, ऐसे ही इनके पति भी आज, उनके पति भी उनके भावों में एकदम संक्रामित हो गए और वो लोग भी बड़े प्रसन्न होकर के उनमें कदम्ब इत्यादि के फूल से भर गए, आमों में मंजरियां आ गई, और भी बहुत से पेड़ हैं बड़े बड़े जिसमें लाल और सुंदर सुंदर सब फल फूल निकलते हैं, वो प्रेम में एकदम भर करके मन मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। लताओं का यहां पर प्राधान्य संबंध है, वृंदावन में इन्हीं लोगों का प्राधान्य, गोपियों का प्राधान्य है, नदियों का प्राधान्य है, गायों का प्राधान्य, वृक्ष इत्यादि का उतना वर्णन नहीं किया, षाणों का, बैलों का, पुरुष जाति का वर्णन नहीं किया कृष्ण के विशेष इस लीला में। इसलिए लताओं के प्राधान्य हेतु प्रथमतः लताओं का परिचय दिया गया, वन लता तरु, इसके बाद में तरु का दिया गया, ऐसा समझना चाहिए। ये प्राधान्य किस लिए, प्रेम के प्राधान्य से। गोपियों का भी गोपों से प्राधान्य अधिक है, नंद बाबा से प्राधान्य जो सदा मैया का है। सखाओं से भी सखियों का अधिक प्रधान, इस तरह से यहां पर भी समझना चाहिए। इसीलिए यह प्राधान्य केवल इसी के लिए नहीं बल्कि प्रेम की वजह से, उनके अंदर में प्रेम अधिकता, प्रेम की अधिकता, क्यों? उनमें स्वाभाविक ही ऐसे भाव है, कहीं नया भाव नहीं लाना, ये साधन के समय से ही है। रागानुगा भक्ति का अवलंबन करके जो जिस रूप में साधन किया उसके अनुसार में साधने करीबे जहां सिद्धि ते पाई जाए, सिद्धि में वैसे ही सिद्धि होगी। इसलिए इन चीजों को समझ करके हमको वैसा ही साधन करना चाहिए और वैसे ही भाव आएंगे और हम लोगों को वैसा ही लोभ उत्पन्न होकर के उस भक्ति में प्रवेश कर, ये लाख जन्म करने पर भी ये भाव सर अपने लाख जन्म तक पढ़ करके कुछ भी नहीं आएगा, ये समझ रखो। ये तो जो गुरु जी की सेवा की उनके मुख से कुछ सुने हैं, ये सबसे बड़ी आराधना है, इनके द्वारा संभव है। चेष्टा करने से ये क्या कृपा सिद्ध है, ये चीज कृपा सिद्धि के द्वारा ये अनुभव कर सकते हैं। साधन के द्वारा ये सब चीजें नहीं होंगी, इस तरह से हजार बार सुनने से भी ये समझ में नहीं, आप किसी को झट हो जाता है। हम ऐसे भावों को प्रणाम करते हैं, ये हम लोगों के हृदय में भी आदित्य वंचा कल्प करुभ्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
ये संस्कृति का आभास की व्याख्या है, इसको जान करके अपनाने के लिए आतुर हो रहे हैं और हमारे भारतवासी लोग इसको छोड़कर के पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार करना चाहते हैं। यदि संस्कृत और शांति चाहते हैं, अपने जीवन को सुख और शांति केवल इसी जीवन में नहीं बल्कि कोटि कोटि अपने जीवनों में और इसके जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं तो विश्व के गीता में कहे हुए उपदेशों को, श्रीमद् भागवत में बताए हुए उपदेशों को अंगीकार करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पश्चात देश इसको अनुभव कर रहा है, हमारे देश के लोग भी कुछ अनुभव कर रहे हैं किंतु पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। कृष्ण के दो स्वरूप माने गए हैं जिसका भी लीला का मंचन हो रहा है, ये कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर रास लीला तक उनके मधुर चरित्र का ये प्रदर्शन किया जाए। कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, गोकुल में उनकी लीलाएं प्रारंभ हुई और रासलीला तक करने के पश्चात में 10 से 11 वर्ष की वयस्क उम्र में देवगुरु मथुरा में लौटे, कंस जैसे पुष्कर राम का श्रृंगार किया, यह दूसरे प्रकार का उनका जीवन है। पहले तो ब्रजभूमि का जो जीवन चरित्र है वो प्रेममय चरित्र, मधुर प्रेममय जीवन चरित्र है। कृष्ण स्वयं ब्रह्म होकर के भी पर ब्रह्म के भी आदर्श सर्वदा उदाहरण होने पर भी अपनी मधुरमय लीलाओं के द्वारा जगत के पशु पक्षियों की तो बातचीत पतंग सरु लता इत्यादि सभी को आकर्षित किया है। यह उनका प्रेममय जीवन है। किस प्रकार से उतना को मार करके भी उसको अपनी मातृगति दी, कंस इत्यादि को भी मार करके उन्हें मुक्ति इत्यादि दी, श्री रामचंद्र जी के जीवन में भी ये चीजें ही देखी जाती। जैसे कि राम और कृष्ण तो में एक है कि राम की लीला मर्यादा नहीं है, कृष्ण की लीला महत्व, इसलिए कृष्ण को यदि हम अपने पुत्र की भांति, यदि कृष्ण को अपने सखा की भांति, यदि कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनका हृदय साधन करें तो गुरु वृंदावन में वैसे ही हम लोग प्राप्त होगा। अब रही मथुरा की और दाता की लीलाएं, वो आध्यात्मिक लीलाएं हैं, उन्होंने असुरों का ध्वंस किया और गीता में लिखे हुए जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भव भारत अभिस्थान अधर्म से ग्लानि भव भारत, इन्हें ये लिखा है भक्त भूमि ने आज से 5000 वर्ष पहले मनुष्य की आकृति में सब असुर लोग भी गए थे, कंस उनमें से एक था, जरा संघ इत्यादि थे। कृष्ण ने असुर का ध्वंस करके धर्म की रक्षा की, इसी के लिए यहाँ पर आविर्भूत हुए, यहाँ पर संत चक्र गदा पद्म लेकर के आविर्भूत हुए और कंस जैसे दुष्ट राजाओं का भी उन्होंने संघार करके धर्म की प्रतिष्ठा की। ठीक कृष्ण जी समय में इस मथुरा में कंस के कारागार में आविर्भूत हुए, उस समय जैसी दशा थी चारों पश्चिम सैनिक छाए हुए थे, कंस के चारों तरफ में जंजीरें लगी थी, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, पर देव देवी को नहीं देख सकते थे। आज मैं इसी दृश्य को देख रहा हूं, भारतीय संस्कृति कड़ा रही है कि हम अपने आराध्य देव की पूजा भी नहीं कर सकते, परीक्षा लेकर के आना पड़ता है। विश्व जाता है ये कृष्ण की जन्मभूमि है, विश्व यहां पर साधु जाता है, किंतु आज वो स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारे साथ के जो अभी चलाने वाले हैं उन लोगों को कम है। विश्व जाता है कि ये कृष्ण की जन्मभूमि है, सभी का आदर से सिद्ध हो जाता है, किंतु यहां पर ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो हमारी संस्कृति को लज्जा से सिद्ध उठाना होता है। इसलिए हम लोगों को कृष्ण लीलाओं से शिक्षा करनी चाहिए। जहां पर वैष्णवों का आदर नहीं, गायों का आदर नहीं, अपनी संस्कृति का आदर नहीं, वो राष्ट्र और राष्ट्र के जो पति हैं सबका ध्वंस होना अनिवार्य है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर एक ऐसी परिस्थिति का प्रवेश होना चाहिए जहां पर भारत के विश्व के सभी लोग और समस्त विश्व के लोग यहां पर आते हैं कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, उस भूमि को स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करने के लिए। और जब यहां आकर के देखते हैं तो सर्व से उनका शिक्षा हो जाता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि इस स्थान को पवित्र बनाए रखकर हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाए और कृष्ण के लीला चरित्र से हम लोग कुछ सीख सके, उनके उपदेशों का पालन कर सके, उनके प्रति हमारी भक्ति हो। कृष्ण सब कार्य कारण है। श्रीमद् भागवत में से यहां तक बताया गया कृष्ण तो भगवान हैं। उन्होंने अनुग्रह करके इस भूमि में अवतरण करके जो वो वैकुंठ इत्यादि में जो लगाए नहीं है उन गांव का यहां पर प्रकाश किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यहां की व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जहां पर सभी लोग आनंद से आकर के अपने सिर को कृष्ण के चरण में जुड़वा सके और उनको देशों को ग्रहण कर सके। मैं अधिक वक्तृता देने के लिए नहीं आया, इसलिए संक्षेप में यही कह करके अपना मैं बैठ पत्र समाप्त कर रहा हूं। गौर प्रणाम। जय जय श्री राधे। मैं आयुर्वेदों को और श्रीराम और उनकी पार्टी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ऐसे ऐसे सुंदर आयोजन के लिए इस कठिन परिस्थिति में भी आप लोग धैर्य धारण करके ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग सब हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद से और आशीर्वाद से
और जोर से तुम्हें भुगा लेगी और अंत में प्राण निकल जाएंगे और इसको जला दिया जाए, ये भी अनिवार्य है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, कृष्ण ने स्वयं जगत का कल्याण कैसे हो, जगत को जीव कैसे सुखी हो, इसके लिए भगवान अवतरित हो जाए, अपने भक्तों को बीच बीच में अवतरित करा इस जगत से पार करने के लिए, दुखों को पार करके सुख और शांति से रहने के लिए बस एक ही उपाय है, वो क्या, भगवान का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करें, इन पदों का गायन करके अपने मन को उसमें रमाए, तब तो आदमी सुखी हो सकता है। यदि कोई कहे कि खाना पीना कैसे चलेगा यदि इसी में रमाए, कैसे लगेगा, मीराबाई का गुजारा नहीं हुआ, हम लोग दिन रात इसी में लगे रहते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। जिसको प्रभु ने पेट और मुख दिया है उसका सबका गुजारा वो प्रभु करते हैं। दाता राम है, सबके दाता है, सबके दाता राम है। पशु पक्षी कीट पतंग ऐसा कोई नहीं है जिसके दाता राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। इस पर विश्वास कर करके भगवान का हरिनाम करो तो देखो तो संसार की परिस्थिति बदल जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तब कथा मृतम सप्त जीवनम कब्सिरीतम कल्पना। भगवान की कथाएं ऐसी हैं उनमें कितनी शक्ति है, वो जस्पनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पंगु को पहाड़ लगाना देता है ये कथाएं। पंगु भी बड़े बड़े गिरिबाजों को लांग जाता, मुख को बाचाल बना देता है, सारे दुखों का अंत कर देता है। भगवान का एक नाम यदि कोई करे और निरंतर यदि नाम करे तो उसका बात ही क्या है, न हो तो परीक्षा करके देखो ये दूर होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, रसिकों ने, भावुकों ने कृष्ण लीला का विविध प्रकार से गान किया है। हम लोगों को संगीत अच्छी लगती है तो ठीक है, हम संगीत नहीं कृष्ण लीला का ऐसा सुंदर वर्णन किया जो सावन आया कुहार पड़ रही है, मयूर कूक रहे हैं,
कोयल कुहक रही है, हिंडोले लगे हुए हैं, कदम्ब के फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर सुगंधा आ रही है और उसमें कृष्ण को झुला रहे हैं। मल्लाग राग से गाग करते करते उसमें तक देखो ये दूध कहाँ चला जाएगा। इसलिए कृष्ण मंत्र में, कृष्ण नाम में, कृष्ण संगीत में, कृष्ण की लीला कथाओं के चिंतन में और स्मरण में इतनी शक्ति है कि सारे दुख भाग सकते हैं। एक ही जन्म में भव सागर को जथा शीघ्र पार करके भगवान के लोक में, भगवान की सेवा में निमग्न हो सकता है। हम सभी भगवान के दास दासी हैं। अभी संसार में भगवान को भूल करके हम लोग इस जगत में आए हैं और माया खानी में हमें पीस रही है। उसमें कोई भेदभाव माया में नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ती। जो कृष्ण को भूल रहे हैं, माया लिप्त हो रहे हैं, उन सबको वो अच्छी तरह से सत्व की भांति में पीस देगी। उसमें गरीब अमीर, धनी गरीब, रईस जमींदार, किसी का भेद नहीं है, भाव नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको सत्तू की तरह में पीस देगी यदि भगवान का भजन नहीं किया। केवल ये संगीत कीर्तन मनोरंजन के लिए ही नहीं है। जब तक हम सुनते हैं देखो तो कैसा इसके प्रभाव, ये संसार को हम भूल जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं और इसमें तन्मय हो जाते हैं। इसलिए साधु संत लोग या तो संसार में रहते हुए